कथाओं के कथाएं ही अमृत हैं। तव कथा अमृतम तप्तस्य, कथा ही अमृत हैं या कथा ही मृत है, मृत्यु है, विष है। कैसे? यदि संसार में कोई उत्तप्त हो गया तो उसके लिए एकमात्र औषधि है भगवान की कथा। और जो प्रेमी जन हैं कृष्ण के विरह में, जब उनकी कथाओं को सुनते हैं तो वही कथा उनके लिए मृत्यु के समान होती है। विरह तो कथा ही मरण के समान है, और नहीं तो कथा ही अमृत है। तो यहाँ पर कहते हैं इनके लिए तो वही है, कथा ही अमृत है। जो उसमें मत हो जाते हैं उनके लिए उरुव्यसन, उरुव्यसन संसार का जो महाताप है, दुख में दुष्ट अनंत ये भव सागर जो है उसको सजीव उत्तीर्ण हो जाते हैं। कर्मिक ज्ञानी लोग क्या करते हैं, उस भव सागर में पढ़ करके जिसमें क्रोकोडाइल मगरमच्छ उनको भी चबा जाने वाले, गिल निगल जाने वाले तिमिंगल इत्यादि मछलियां हैं जो मिलो लंबी होती हैं, एक जहाज टकरा जाने से जहाँ चूर मार हो जाएगा ऐसे उसके अंदर में है। सांप बड़े भयंकर ऐसे गति से चलते जिनको देख करके रोमांच हो जाए। एक बार बाढ़ में हम गोवर्धन में थे, वहाँ पर बाढ़ में पानी चारों तरफ भर गया, बीच के घर में हम लोग थे ऊपर और नीचे पानी इतना तक भरा। तो एक बार निकल करके गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए जा रहा था, देखा एक लंबा कम से कम तो 8-10 सांप लंबा काला सांप और ऐसे करके बड़ी खुद एक क्षण में निकल गया, पासी से एक हाथ के पास एकदम प्राण सन्न हो गया। वो समुद्र में कैसा होगा, ऐसे भयंकर भयंकर वो जानवर होते हैं जिनका ऐसा मूड एकदम निकल जाएंगे ऐसे। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो ऐसे जानवरों से भरा हुआ संसार दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोधादि नकर मकरई कवली कृतस्य दुर्वासना निगृहितस्य निराशयस्य चंद्रमम देही। कामना वासनाओं से हमारा ये जकड़े हुए हथड़ की बेड़ी से तस्य मश नहीं हो सकते, और ये सब काम क्रोध इत्यादि तिमिंगल जैसे लोग चैतन्य महाप्रभु के चरणों, उनके भक्तों के चरणों के अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा नहीं। तो इस ऐसा जो प्रचंड है भव सागर, जिसको साजी पार में, उसमें कर्मी ज्ञानी लोग क्या करते हैं, कोई तृण गुच्छ बहता हुआ जा रहा है तीन का, उसने बचाने के लिए बचने के लिए क्या किया, उसको पकड़ा तो उसके सहित वो अतल तल में डूबने लग गया। उस समय भगवान के निरतर नाम रूपी नौका के सहारा के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है भव सागर को पार करने की, मनुष्य जन्म पा करके अभी हम लोग उसी पे पड़े। कोई कर्म का तृण गुच्छा, कोई ज्ञान का तृण सुखा सागर गुच्छा पकड़ करके सुखी और शांति रहना चाहते, लाल नाराज नहीं प्रभु हमको तो आपका, ऐसे भक्तों का हमको आश्रय और संग चाहिए। जैसे एक आदमी मधु पान कर रहा है, क्यों पान कर रहा है, बंदर मधु पान करते हैं या मनुष्य करते हैं, किस लिए, बड़ा मीठा लगता है इसलिए उसे पान कर रहा है, किंतु अपने आप उसके शरीर में जितना पीता जाएगा गर्मी आती जाएगी, ठंडों के दिनों में भी यदि वो पिए तो गर्मी अपने आप आएगी, उसका वो ऐसा ही तासीर है स्वभाव है। गर्मी के गर्मी लगने के लिए शीत से बचने के लिए मधुपान नहीं कर रहा, वो कर रहा है उसको सुंदर अच्छा लग रहा है। उसी तरह से भगवत भक्तों का संग जो होता है उसमें जो हरि कथा होती है उसके रसास्वादन से क्या होता है, कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति होती है और आनुषंगिक रूप में अर्थात यह भव सागर को सजी अनेस रूप में पार कर जाते हैं, इसलिए वही उसका मूल। इसलिए शीत निवारण इत्यादि मधुपान का मूल प्रयोजन नहीं बल्कि रसास्वादन ही उसका मूल तात्पर्य है। इसलिए चतुर्थ स्कंद में शंकर जी ने भी कहा, कितना बजे हो गया सात नहीं बेस्लोक नहीं उसको आर्म कर दो क्षणार्धे क्षणार्धेन अपि तुले न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संघर्ष मर्ता नाम की यहाँ पर शंकर जी ने चतुर्थ स्कंद में किसको कह रहे हैं प्रचेता जी को उपदेश दे रहे हैं क्षणार्धे नपि तुलये न स्वर्गम सत्संग के क्षण मात्र सत्संग का जो फल है एक क्षण यदि साधु का संग लव मात्र भी साधु संग न तुलये स्वर्गम स्वर्ग का जितना सुख है इंद्र के पास में जितना है सुख वो क्षण मात्र साधु के संग में जो फल उसके बराबर नहीं और न अपनर्भव और मोक्ष से जो मुक्ति है संसार से जितने प्रकार के मोक्ष का सुख है वो भी भगवत भक्ति के लौ मात्र संग से भक्तों के संग के बराबर नहीं है। भगवत संगी संघस्य मर्ता नाम की उताशिष है भगवत संगियों का संग इतना अधिक होता है प्रभावशाली किम उत आशीष मनुष्यों के लिए इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ चाहिए मनुष्यों के लिए इसे और मूल्यवान क्या चीज़ हो सकता है साधु संग से कुछ नहीं हो सकता इसके व्याख्या हम लोग अब कर रहे हैं वंशाकल्पतरुभ्यश्चिभाषिभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो साधु संग का है स्नान है। तो एक महात्मा जी बैठे हुए तो कहते हैं ये अरे तू तीन बार स्नान करता है और ये तो दिन रात उसी पानी में रहती है तो तुम श्रेष्ठ है ना, ये यदि ये तीन बार दिन भर पानी में रह करके इसमें इतना दुर्गंध है जो नाक नहीं वहाँ लगाया जाता तो तुम्हारा क्या अवस्था है, इसके द्वारा नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कर महापुरुषों का संग ही प्रधान है। अथवा जल प्रदेश, जल प्रवेश व अग्नि में प्रवेश, बहुत से लोग अग्नि में प्रवेश करते हैं नहीं होता। अथवा सूर्यमंडल को भेद करके भी चले जाओ, सूर्यमंडल को भेद करते हैं, कोई वायुमंडल को भेद करते हैं, कोई कुछ को करते हैं, क्या होगा उससे। भीष्म पितामह जी ने कहा कि हम उत्तरायण में ही जाएंगे दक्षिण में, ये सब क्या चीज़ है, वैष्णव को जरूरत है कि नहीं, ये छलना मात्र था। वो युद्ध को शेष देखना चाहते थे और युद्ध के बाद में क्या होता है इसका परिणाम भी देख करके जाना चाहते थे और उसके संबंध में दुर्योधन इत्यादि को पांडवों को कुछ उपदेश भी देना चाहते थे। पांडवों को उपदेश नहीं, उन्हीं के बहाने विश्व को उपदेश देने के लिए चाहते। इसलिए वो युद्ध में ये सब संभव नहीं, स्थिर चित्त होकर इसलिए वो थे। इसलिए जब तक कि महापुरुषों का के चरण रज से अभिषेक्त नहीं हुआ जाए, चरण रज क्या पहले भी बतलाया है, साधु महात्मा लोग चरण की धूली नहीं दे, उनको पकड़ लो चार पांच आदमी दस आदमी मिलकर के पकड़ करके पटक दो और जबरदस्ती धूल ले लो या पैर लेकर के अपने रगड़ लो तो उसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई उसे नहीं हो। यहाँ पर चरण रज के का तात्पर्य उनके उपदेशों का यथार्थ रूप में पालन करना, उनकी कथाओं को सुनना, ये यथार्थ। अन्यथा स्थूल से होता था तो हम लोग तो ऐसा ही कर लेते, पकड़ करके उनका टांग भी तोड़ करके यहाँ पर दिन भर मलते रहते, ऐसे लाख जन्म भी करने से नहीं। उनके उपदेशों को सुन लाट करके पालन करो, उनकी कथाओं को सुनो, उस पर चलो, और नहीं तो हम हरि कथा प्रभु जी सुनेंगे, हम भागवत सुनेंगे, हम सब कुछ करेंगे किंतु मेड़ जहाँ था वहीं रहेगा। मेड़ कहाँ था, जहाँ था वहीं रहेगा। दो पार्टियों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था थोड़ी सी जमीन के लिए, तो गांव वालों ने दोनों पक्षों को बुलाया तो ये जो बदमाश था उसने कहा जी ठीक है पंचों का आदेश हमारे सिर मत्थे पर, किंतु मेड़ जहाँ है वहीं रहेगा, आप लोग हजार कहिए। तो वैसे हम लोगों में भी ऐसे हैं, महाराज जी आप जो कुछ भी कहिए कह लीजिए, सनातन गोस्वामी भी जो कर रहे हैं सो कह लीजिए, किंतु हमारा मेड़ जहाँ था वहीं रहेगा। हम लोग एक इंच भी इतने दृढ़ हैं कि एक मिनट एक इंच भी नहीं धर धर होंगे, एक इंच की बात क्या, एक सूत एक केस के बराबर भी धर धर नहीं हटेंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तब यहाँ पर महापुरुषों का आधा क्षण का संग भी बेकार हो जाता है। कितना बच गया,
7:40
हो गया, आज यहीं पर है। तात्पर्य यह कि महापुरुषों का अनुग्रह व्यतीत, यहाँ पर पद्मधुली बतलाया अनुग्रह, अपने आप उनका अनुग्रह। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना जो कुछ है सब कुछ छोड़ करके महापुरुषों की कृपा के ऊपर में निर्भर करने से ही, उनकी कथाओं को यथार्थ रूप में श्रवण करके कृतार्थ आदि, किंतु यह श्रद्धा नहीं होने से एक झटके में ऐसा संग दूर हो जाता तो वो संग कहाँ है। आज यही कहता है पंचाकल्प परिवेश।